बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में किताब उर्दू लाजमी नवीं और दसवीं जमातों के लिए सेल्फ टेक्स्ट बुक पोर्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ये किताब 208 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये किताब अलसुफा ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। आइए किताब का पार्ट नंबर 4 सुनते हैं। सफ़ा नंबर 52। सुल्ताना, मुझको आज तक इतला नहीं, देखो मैं आदमी भेजती हूँ। ये कहकर अपने घर की दारोगा को बुलाया कि मानी जी, कोई मौलवी साहब इस महल्ले में रहते हैं। बाजी अम्मा कहती हैं इनकी छोटी बहू बहुत पढ़ी लिखी हैं। देखो अगर उस्तानी गेरी की नौकरी करें तो उनको बुलाओ। मानी जी मौलवी साहब के घर आई, मोहम्मद कामिल की माँ से साहब सलामत हुई। मानी जी तुम्हारी छोटी बहू कहाँ हैं? मोहम्मद कामिल की माँ कोठे पर हैं। मानी जी मैं उनके पास ऊपर जाऊँगी, दयानतुल निसा बहू साहब यहीं आ जाएंगी। तमीज़दार बहू के नीचे उतरने का वक्त आ गया था, क्योंकि असर की नमाज़ पढ़कर असगरी नीचे उतर आती थी और मगरिब और इशा दोनों नमाज़ें पढ़ा करती थीं। असगरी को मानी जी ने देखा तो बातों ही बातों में इतना कहा कि बेगम साहब को अपनी छोटी लड़की का तालीम कराना मंजूर है। बड़ी बेगम साहब ने आपका ज़िक्र किया तो बेगम साहब ने मुझको भेजा। असगरी दोनों बेगम साहबों को मेरी तरफ़ से बहुत सलाम कहना। मेरा जी बहुत चाहता है कि बेगम साहब की लड़की को पढ़ाऊँ, लेकिन क्या करूँ, ना तो बेगम साहब लड़की को यहाँ भेजेंगी और ना इनके घर मेरा जाना हो सकता है। मानी जी ने तनख्वाह का तो नाम ना लिया, लेकिन दबी जुबान से इतना कहा कि बेगम साहब हर तरह से खर्च पात की जिम्मेदारी करने को मौजूद हैं। सफ़ा नंबर 53। असगरी ये सब उनकी मेहरबानी है, उनकी रियासत को यही बात ज़ेबा है, लेकिन उनके ज़ेरे साया हम गरीब भी पड़े हैं तो खुदा नंगा भूखा नहीं रखता। बिन दामों की लॉन्डी बनकर खिदमत करने को तो मैं हाजिर हूँ, और अगर तनख्वाहदार उस्तानी दरकार हो तो शहर में बहुत मिलेंगी। असगरी की गुफ्तगु सुनकर मानी लट्टू हो गई। हर चंद के नवाबी कारखाने देखे हुए थे, मगर असगरी की शुस्ता तकरीर सुनकर दंग हो गई और माजरत की कि भी मुझको माफ़ करना। गर्ज़ मानी जी रुखसत हुई और वहाँ जाकर कहा, बेगम साहब उस्तानी तो वाकई में लाख उस्तानियों की एक उस्तानी है, जिसकी सूरत देखने से आदमी बन जाए, पास बैठने से इंसानियत सीखे, साया पड़ जाने से सलीका सीखे, हवा लग जाने से अदब पकड़े, लेकिन नौकरी करने वाली नहीं। तहसीलदार की बेटी है, रईस लाहौर के मुख्तार की बहू, घर में मामा नौकर है, दालान में चांदनी बिछी है, सूजनी गाँव तकिया लगा है, अच्छी खुशगुजार इन गुजारन जिंदगी, भला उनको नौकरी की क्या परवाह है। शाह जमानी बोली, सच है बू सुल्ताना, तुमने मानी जी को भेजा तो था, लेकिन मुझको यकीन ना था कि वो नौकरी करेंगी। मानी जी लेकिन वो तो ऐसी आदमी है कि मुफ्त पढ़ाने की खुशी से राज़ी हैं। सुल्ताना ने पूछा, क्या यहाँ आकर? मानी जी भला बेगम साहब जो नौकरी की परवाह नहीं करता वो यहाँ क्यों आने लगा? सुल्ताना, क्या फिर लड़की वहाँ जाया करेगी? शाहजमानी, इस वक्त में कबाहत की क्या बात है? सुल्ताना, खैर हुसन आरा वहीं चली जाया करेगी। सफ़ा नंबर 54। अगले दिन शाह जमानी बेगम और सुल्ताना बेगम दोनों बहनें हुसन आरा को लेकर असगरी के घर आईं। दोनों बहनों ने असगरी से कहा कि मेहरबानी करके इसको दिल से पढ़ा दीजिए। असगरी, अव्वल तो खुद मुझको क्या आता है, मगर जो चार हरफ बुज़ुर्गों की अनायत से आते हैं, इंशाल्लाह इनके बताने में अपने मुकद्दर भर दरीख ना करूँगी। चलते हुए सुल्ताना बेगम असगरी को अशरफ़ी देने लगी। असगरी, इसकी कुछ ज़रूरत नहीं, भला ये क्यों कर हो सकता है कि मैं पढ़वाई आपसे लूँ? सुल्ताना, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़वाई देने का हमारा क्या मुँह है, बिस्मिल्लाह की मिठाई है। असगरी, हाँ शुरू में तबर्रुक के तौर पर मिठाई बाँट दिया करते हैं, सो अशरफ़ी क्या होगी, बच्चों का मुँह मीठा करने को सीर आज सीर मिठाई काफ़ी है। ये कहकर दयानत की तरफ इशारा किया, वो एक काप भर कर नुक्तियाँ लाई। असगरी ने खुद फातह पढ़कर पहले हुसैन आरा को दी और भरी काप दयानत को दी, सब को दी के सब बच्चों को बांट दो। गर्ज दुनिया साजी की बातें हो हुआ कर शाह मानी बेगम चली गईं और हुसैन आरा को असगरी के हवाले कर गईं। माखुजास मिरातुल अरूज, सफ़ा नंबर 55, मश्क, सवाल नंबर 1। दर्ज ज़ेल सवालात के जवाबात दीजिए। अलिफ, फतेउल्लाह खां की कितनी बेटियां थीं, इनके नाम बताइए। बे, सुल्ताना के रंजीदा रहने की असल वजह क्या थी। जी, हुसैन आरा मिजाज के लिहाज से कैसी थी। दाल, शाह जमानी बेगम ने हुसैन आरा की तालीम के बारे में छोटी बहन को क्या मशवरा दिया। हे, असगरी ने हुसैन आरा को पढ़ाने के लिए कहाँ बुलाया। सवाल नंबर 2, दर्ज ज़ेल में दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। अलिफ, फतेउल्लाह खां ने अंदूरे में इमलाक खरीद की, 1, सैकड़ों रुपए की, 2, हज़ारों रुपए की, 3, लाखों रुपए की, 4, अरबों रुपए की। बे, शाह जमानी बेगम उतरी, 1, पालकी से, 2, रिक्शे से, 3, बग्घी से, 4, घोड़े से। जी, मोहम्मद फाजिल की छोटी बहू थी, 1, कामचोर, 2, कम अकल, 3, उम्र रसीदा, 4, पढ़ी लिखी। दाल, सुल्ताना बेगम चलते हुए असगरी बेगम को देने लगी, 1, अशरफ़ी, 2, बिरयानी, 3, कपड़े, 4, मिठाई। हे, दयानत काप में भर लाई, 1, नुक्तियाँ, 2, अशरफियाँ, 3, खीर, 4, रोटियाँ। सफ़ा नंबर 56, सवाल नंबर 3। दर्ज ज़ेल कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाइए। अलिफ, जमाल आरा और हुसैन आरा का बाप। 2, सुल्तान की बहन। 3, मोहम्मद कामिल की बीवी। 4, असगरी की सास। 5, फतेउल्लाह खां के बड़े भाई। बे, असगरी, दयानतुल निसा, हकीम रुल्ला खां, फतेउल्लाह खां, शाह जमानी बेगम। सवाल नंबर 4, दर्ज ज़ेल की तशरीह अपने अल्फाज में लिखिए। अलिफ, दुनिया का दस्तूर है कि कोई फ़र्द बशर रंज से खाली नहीं, अगर हर तरफ खुशी ही खुशी हो तो इंसान खुदा को भूल कर भी याद ना करे। बे, ढिंडोरा शहर में बच्चा पागल में। सवाल नंबर 5, दर्ज ज़ेल अल्फाज और मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। लट्टू होना, दरेग ना करना, शिस्ता, नाला, कबाहत। सरगर्मियाँ, नंबर 1, तलबा कमरा जमात में ये सबक ड्रामाई अंदाज में पेश करें। नंबर 2, तलबा अच्छी आदात का चार्ट बनाकर कमरा जमात में आवेज़ा करें। नावल सादा जुबान में ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें इंसानी ज़िंदगी के मामूली और रोज़ाना पेश आने वाले वाक़यात को दिलचस्प अंदाज में तहरीर किया जाता है। प्लाट, मंजर निगारी, किरदार निगारी, मुकालमा निगारी इसके बुनियादी अनासिर हैं। हिदायत बराए असाज़ा, नंबर 1, तलबा को नावल निगारी की बुनियादी फ़नी निकात से आगाह कीजिए। नंबर 2, अपनी निगरानी में इस सबक का ड्रामा तैयार कराइए। नंबर 3, नावल के बारे में दी गई तारीफ की वजाहत कीजिए। सफ़र नंबर 57, मुंशी प्रेम चंद, विलादत 1880, वफात 1936। आपका असल नाम धमपत राय था, ज़िलाए बनारस के एक गांव में पैदा हुए। वालिद मुंशी अजायब लाल डाक खाने में क्लर्क थे। प्रेमचंद ने एक मौलवी साहब से फ़ारसी और उर्दू की तालीम हासिल की, जबकि अंग्रेज़ी तालीम बनारस में हासिल की। تعلیم سے فارغ ہو کر ایک پرائمری اسکول میں استاد ہو گئے۔ 1908 میں ڈپٹی انسپیکٹر مدارس ہو گئے۔ پریم چند کی ادبی زندگی کا آغاز 1901 سے ہوا۔ آپ نے منشی دھیان رائن نگم کے رسالے زمانے میں مضامین لکھے، پھر افسانہ نگاری اور ناول نگاری کی طرف توجہ دی۔ پریم چند نے غریبوں کے حالات و واقعات کو اپنے افسانوں اور ناولوں کا موضوع بنایا۔ پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ سوز وطن، واردات، بیوہ، زاردائے، نرملا، میدان عمل، گودان، پریم بستی، پریم پچیسی، پریم چالیسی اور چوگان ہستی ان کی مشہور تصنیف ہے۔ انہوں نے کل 29 ناول لکھے۔ صفحہ نمبر 58، بوڑھی کاکی۔ حاصلات تعلم، یہ سبق پڑھ کر طلبہ نمبر 1 مرکب ناقص اور مرکب تام میں فرق کر سکیں، نمبر 2 مباحثوں اور مذاکروں میں موضوع کے حق یا مخالفت میں حصہ لے سکیں، نمبر 3 کسی نثر پارے کی فکری و فنی خوبیوں کو پیش نظر رکھ کر خلاصہ لکھ سکیں، نمبر 4 اپنی گفتگو میں احساس، جذبہ اور تاثر کے حوالے سے شدت اور زیر و بم کا لحاظ کر سکیں۔ بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ بوڑھی کاکی میں ذائقے کے سوا کوئی حس باقی نہ تھی۔ آنکھیں، ہاتھ، پیر سب جواب دے چکے تھے۔ زمین پر پڑی رہتی اور جب گھر والے کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف کرتے، کھانے کا وقت ٹل جاتا یا مقدار کافی نہ ہوتی یا بازار سے کوئی چیز آتی اور انہیں نہ ملتی تو رونے لگتی تھی، اور ان کا رونا محض بے سورانہ تھا۔ وہ بے آواز بلند روتی تھی۔ ان کے شوہر کو مرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، 7 بیٹے جوان ہو کر داغ دے گئے اور اب ایک بھتیجے کے سوا دنیا میں ان کا کوئی نہ تھا۔ اسی بھتیجے کے نام انہوں نے ساری جائیداد لکھ دی تھی۔ ان حضرات نے لکھاتے وقت تو خوب لمبے چوڑے وعدے کیے، لیکن وہ وعدے صرف سبز باغ کے تھے۔ اس جائیداد کی سالانہ آمدنی 150-200 روپے سے کم نہ تھی، لیکن بوڑھی کاکی کو اب پیٹ بھر روکھا دانا بھی مشکل سے ملتا۔ بدھ رام طبیعت کے نیک آدمی تھے، لیکن اسی وقت تک کہ ان کی جیب پر کوئی آنچ نہ آئے۔ روپا طبیعت کی تیز تھی، لیکن ایشور سے ڈرتی تھی۔ صفحہ نمبر 59، اس لیے بوڑھی کاکی پر اس کی تیزی اتنی نہ کھلتی تھی جتنی بدھ رام کی نیکی۔ بدھ رام کو کبھی کبھی اپنی بے انصافی کا احساس ہوتا۔ وہ سوچتے کہ اس جائیداد کی بدولت میں اس وقت بھلا آدمی بنا بیٹھا ہوں، اور اگر زبانی تسکین یا تشبیہ سے صورتحال میں کچھ اصلاح ہو سکتی تو انہیں متعلق دریغ نہ ہوتا، لیکن مزید خرچ کا خوف ان کی نیکی کو دبائے رکھتا تھا۔ سارے گھر میں اگر کسی کو کاکی سے محبت تھی تو وہ بدھ رام کی چھوٹی لڑکی لاڈلی تھی۔ لاڈلی اپنے دونوں بھائیوں کے خوف سے اپنے حصے کی مٹھائی بوڑھی کاکی کے پاس بیٹھ کر کھایا کرتی تھی۔ رات کا وقت تھا، بدھ رام کے دروازے پر شہنائی بج رہی تھی اور گاؤں کے بچوں کا جم غفیر نگاہ حیرت سے گانے کی داد دے رہا تھا۔ چارپائیوں پر مہمان لیٹے ہوئے نائیوں سے ٹکیاں لگوا رہے تھے۔ بدھ رام کے لڑکے سکھ رام کا تلک آیا ہے، یہ اسی کا جشن ہے۔ گھر میں مستورات گا رہی تھی اور روپا مہمانوں کی دعوت کا سامان کرنے میں مصروف تھی۔ بوڑھی کاکی اپنی اندھیری کوٹھری میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لذت آمیز خوشبو انہیں بیتاب کر رہی تھی۔ وہ دل میں سوچتی تھی، شاید مجھے پوریاں نہ ملیں گی، اتنی دیر ہو گئی کوئی کھانے لے کر نہیں آیا۔ بوڑھی کاکی کے چشم خیال میں پوریوں کی تصویر ناچنے لگی۔ خوب لال لال، پھولی پھولی، نرم نرم ہوں گی۔ کچوریوں میں اجوائن اور الائچی کی مہک آ رہی ہوگی۔ ایک پوری ملتی تو ذرا ہاتھ میں لے کر دیکھتی، کیوں نہ چل کر کڑاہ کے سامنے ہی بیٹھوں۔ صفحہ نمبر 60، پوریاں چھن چھن کڑاہ میں تیرتی ہوں گی۔ کڑاہ سے گرما گرم نکل کر کٹوتی میں رکھی جاتی ہوں گی۔ اس طرح فیصلہ کر کے بوڑھی کاکی اکڑوں بیٹھ کر ہاتھوں کے بل खिसकती हुई वह मुश्किल तमाम चौखट से उतरी और धीरे धीरे रिंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। रूपा उस वक्त एक सरा सेगवी की हालत में थी। इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास, कभी कोठे पर। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। उतने में फिर किसी ने कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सुधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा कि अभी खाना तैयार होने में कितनी देर है, ज़रा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, फिर गुस्सा बाहर निकलने का मौका ना पाता था। खौफ होता था कि कहीं पड़ोस ने ये ना कहने लगें कि इतने ही में उबल पड़ी। प्यास से खुद इसका हलक सूखा जाता था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, लेकिन उतनी फुर्सत कहाँ कि ज़रा पानी पी ले या पंखा लेकर झले। ये भी अंदेशा था कि ज़रा निगाह पलटी और चीज़ों की लूट मची। इस कश्मकश के आलम में इसने बूढ़ी काकी की कड़ाह के पास बैठे देखा तो जल गई। गुस्सा ना रोक सका, ये ख्याल ना रहा कि पड़ोसने बैठी हुई है, दिल में क्या कहेंगी, मर्दाने में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे मेंढक केचुए पर झपटता है, इसी तरह वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झंझोड़कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि आग का कुंड है। कोठरी में बैठे क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया। सफ़ा नंबर 67। तब तक सब्र ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती, तब ही तो इस तरह भुखलाए फिरती है। इस ख्याल से इसका गुस्सा और भी तेज़ हो गया। नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवाने के दाम लेगी, इतना ठूंसती है ना जाने कहां भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। बूढ़ी काकी ने सर ना उठाया, ना रोई, ना बोली, चुपचाप रिंगती हुई वहाँ से अपने कमरे में चली गई। लाडली को काकी से बहुत उन्नत था, भोली भाली सीधी लड़की थी, तिफलाना शोखी और मुसर्रत की इसमें बू तक ना थी। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सारी पूरियाँ नहीं दे देते, मेहमान सबकी सब थोड़ी थोड़े ही खा जाएंगे, और अगर काकी ने मेहमानों से पहले ही खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वो काकी के पास जाकर उन्हें तशफी देना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से ना जाती थी। इसने अपने हिस्से की पूरियां मुतल्लिक ना खाई, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। वो ये पूरियां काकी के पास ले जाना चाहती थी। इसका दिल बेकरार हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी आवाज़ सुनते ही उठ बैठेंगी, पूरियाँ देखकर कैसी खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे, रूपा आंगन में सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी, काकी को पूरियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। इसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा गाफिल सो रही हैं, तो वो छुपके से उठी और सोचने लगी कि कैसे चलूँ। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चूल्हों में आग चमक रही थी। सफ़ा नंबर 62। लाडली की निगाह दरवाजे वाले नीम के दरख्त की तरफ गई। मारे खौफ के इसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढारस हुई, कई सोते हुए आदमियों की निस्बत एक जागता हुआ कुत्ता इसके लिए ज़्यादा तकवियत का बाइस हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूँ, काकी ने लाडली की आवाज़ पहचानी। चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दीं। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है। काकी पूरियों पर टूट पड़ी, 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया, जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी जिस हबस पैदा कर देती है। इसी तरह इन चंद पूरियों ने काकी की इश्तहा और रगबत को और भी तेज़ कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। काकी ने पटारी को फिर टटोला, इसमें चंद रेजे गिरे थे, उन्हें निकाल कर खा गई। यकायक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनका मनशाना समझ सकी, उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर झूठे पतीलों के पास बिठा दिया और गरीब भूख की मारी फातरुल अकल बुढ़िया पतीलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। सफ़ा नंबर 63। एंड उसी वक्त रूपा की आँख खुली, उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का कलेजा सुन सा हो गया। रूपा को अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफी आज तक कभी इतनी सफाई से नज़र ना आई थी। हाय, मैं कितनी बेरहम हूँ, जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपये साल की आमदनी हो रही है उसकी ये दुर्गत और मेरे कारण मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया, मैं इनके इशारे की गुलाम बनी हुई थी। अपने नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिसकी बदौलत हज़ारों रुपए खाए उसे इस तकलीफ के दिन भी पेट भर कर खाना ना दे सकी। महज इसलिए ना कि वो बुढ़िया है, बेकस है, बेजुबान है। उसने चिराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाज़ा खोला और एक थाली में खाने की सब चीज़ें सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। आधी रात हो चुकी थी। आसमान पर तारों के थाल सजे हुए थे और इन पर बैठे हुए फरिश्ते बहश्ती नेमतें सजा रहे थे, लेकिन इन में किसी को वो मुसरत ना हासिल हो सकती थी जो बूढ़ी काकी को अपने सामने थाल देखकर हुई। रूपा ने रिकत आमेज लहजे में कहा, काकी उठो, खाना खा लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई। इसका बुरा ना मानना पर महात्मा से दुआ करो कि मेरी खता माफ़ कर दे। सफ़ा नंबर 64। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और घुर कियाँ सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। इनके एक एक रुएं से सच्ची दुआएं निकल रही थीं और रूपा बैठी ये रूहानी नज़ारा देख रही थी। माखुजास प्रेमचंद के मुंतखब अफसाने। मश्क। सवाल नंबर 1। दर्द झेल सवालात के जवाब कीजिए। अलिफ। बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद बुध राम के नाम क्यों लिख दी थी? बे। बुध राम ने जायदाद हासिल करने के बाद बूढ़ी काकी से कैसा सलूक किया? जीम। बुध राम के घर में किस बात का जश्न मनाया जा रहा था? दाल। बूढ़ी काकी भूख से बेताब होकर जब कड़ाह के पास पहुंची तो रूपा ने उनके साथ कैसा सलूक किया? हे। लाडली ने अपनी गुड़ियों की पटारी में पूरियां क्यों छुपाई थी? वाओ। पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाते देख कर रूपा का क्या हाल हुआ? जे। रूपा ने बूढ़ी काकी को खाने का थाल देकर क्या कहा? सवाल नंबर 2। इस अफसाने का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। सवाल नंबर 3। इस अफसाने की फिक्री और फनी खूबियां बयान कीजिए। सवाल नंबर 4। दर्ज ज़ेल अल्फाज और मुहावरात अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जमे गफीर, इश्तहा, नाक कटवाना, भंडारे, नाम बेचना, सब्स बाग दिखाना। सफ़ा नंबर 65। सवाल नंबर 5। दर्ज ज़ेल में दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। अलिफ। बुढ़ापा दौरे सानी हुआ करता है। अलिफ। तो तफूलत का। नंबर 2 बचपन का। नंबर 3 बलोगत का। नंबर 4 जवानी का। बे। बुढ़िया के जवान बेटे मर गए थे। नंबर 1 5, नंबर 2 6, नंबर 3 7, नंबर 4 8। जी। बुध राम आदमी थे। नंबर 1 चालाक, नंबर 2 मक्कार, नंबर 3 नेक, नंबर 4 बेवकूफ़। दाल। रूपा सो रही थी। नंबर 1 आंगन में, नंबर 2 कमरे में, नंबर 3 कोठरी में, नंबर 4 बरामदे में। हे। बुध राम की छोटी लड़की थी। नंबर 1 मंचली, नंबर 2 लाडली, नंबर 3 जिद्दी, नंबर 4 चंचल। इन जुमलों को गौर से पढ़िए। नंबर 1 इतनी देर हो गई कोई खाना लेकर नहीं आया। नंबर 2 लंबे चौड़े वादे। नंबर 3 अकेली औरत। नंबर 4 बुढ़ापा बचपन का दौरे सानी होता है। नंबर 5 सब्स बाग। नंबर 6 अब पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता है। ऊपर दिए गए जुमलों में कुछ जुमले मुकम्मल हैं, इनमें बात भी पूरी हो रही है और मतलब भी पूरे तौर पर वाज़े हो रहा है। लफ्ज़ों के ऐसे मजमूए को जिसमें लफ्ज़ों के दरमियान ताल्लुक और लगाव पाया जाए उसे मरकब ताम कहते हैं। जुमला एक, चार और छः मरकब ताम के जुमले हैं। इसके बरअक्स जुमला दो, तीन और पाँच में बात पूरी नहीं हो रही और मतलब भी पूरे तौर पर वाज़ह नहीं हो रहा। ऐसे लफ्ज़ों के मजमूए को मरकब नाकस कहते हैं। सफ़ा नंबर 66। सवाल नंबर 6। आप इस सबक में से मरकब ताम और मरकब नाकिस की तीन तीन मिसालें तलाश करके लिखें। सवाल नंबर 7। दर्ज ज़ेल पैरा एहसास जज्बे तासीर और ज़ेरो बम का ख्याल रखते हुए बुलंद आवाज़ से पढ़ें। रूपा को अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफ़ी आज तक कभी इतनी सफाई से नज़र ना आई थी। हाय, मैं कितनी बेरहम हूँ जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपये साल की आमदनी हो रही है। उसकी ये दुर्गत और मेरे कारण आज सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया। मैं इनके इशारे की गुलाम बनी हुई थी। अपने नाम के लिए अपनी बड़ाई के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिसकी बदौलत हज़ारों रुपए खाए उसे इस तकरीब के दिन भी पेट भरकर खाना ना दे सकी। महज इसलिए ना कि वो बुढ़िया है, बेकस है, बेजुबान है। सरगर्मियाँ। नंबर 1। ईद कुर्बान और हमारी जिम्मेदारियों के मौजू पर तलबा क्लास में 3 से 4 मिनट की तकरीर करें। नंबर 2। तलबा लाडली के किरदार पर रोशनी डालें। अफसाना जिसको शॉर्ट स्टोरी भी कहा जाता है उससे मुराद नस्ल में एक मुख्तसर सादा किस्सा है जिसमें ज़िंदगी के एक पहलू को बेनकाब किया गया हो। उर्दू में मुख्तसर अफसाना अंग्रेज़ी ज़ुबान व अदब के वसीले से आया। हिदायत बराए असाध्या। नंबर 1। तलबा को अफसाने की हेयत और फ़नी व फ़िक्री अंदाज़ के बारे में बताइए। नंबर 2। मस्कूरा पैरा पढ़ने के दौरान तलबा की ज़रूरी रहनुमाई करते रहिए। नंबर 3। नावल और अफसाने में फ़र्क बताइए। सफ़ा नंबर 67। डॉक्टर बनी बख्श खान बलोच। विलादत 1917, वफात 211। डॉक्टर बनी बख्श खान बलोच सिंध के एक गांव जाफर खान लखारी ज़िले सांगर में पैदा हुए। आप अभी 6 महीने के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। आपकी तरबियत वालदा और चचा ने की। उन्होंने MA अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और एजुकेशन में कोलंबिया यूनानी यूनिवर्सिटी से PhD किया। डॉक्टर साहब ने क्याम पाकिस्तान के बाद अलामा II काजी की सरबराही में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की तरक्की और तामीर में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने उर्दू सिंध लुगत और सिंधी उर्दू लुगत डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान के साथ तैयार की। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई पर तहकीकी मजले सिंधी मौसीकी सिंधी अदब की तारीख और लोक अदब पर किताबें लिखी हैं। वो ना सिर्फ सिंधी बल्कि अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, सराइकी और उर्दू के भी माहिर थे। सिंध के इस अजीम फर्जंद को इनकी वसीयत के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में अलामा II काजी की कब्र के बराबर दफन किया गया। मौजूदा कहानी सयाना बादशाह आपकी तहरीर करदा किताब लोक कहानियां से ली गई है। सफ़ा नंबर 68। सयाना बादशाह। हासिलात तअल्लुम ये सबक पढ़ कर तलबा नंबर 1 मावराई किरदारों के बारे में जान सके, नंबर 2 लोक कहानी से महफूज हो सके, नंबर 3 लफ्ज़ी इशारों और तस्वीरों की मदद से कहानी लिख सके। एक शख्स था जिसके पास बेशुमार धन दौलत थी। इसके 4 बेटे थे। इस एक बार वो सख्त बीमार हुआ। बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। जब बचना महाल देखा तो सोचा कि मेरी जो भी मलकियाँ थे वो अब भी अपने लड़कों में तकसीम कर दूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद आपस में लड़कर जुदा हो जाएं। ये सोचकर उसने 4 देगे मंगवाई और अपनी मलकियत के हिस्से किए, कुछ एक में, कुछ दूसरी में। इसी तरह चारों देगों में कुछ ना कुछ डालकर चारों देगे जुदा जुदा अपनी घाट के चारों पायों तले गाड़ दी। जब सकरात का वक्त आया तो चारों बेटों को बुलाकर कहा, बेटा धन दौलत ऐसी शय है जिसकी वजह से हमेशा खून खराबा होता है। मैंने अपनी सारी मलकियत 4 हिस्सों में तकसीम कर दी है। चारों हिस्से अलग अलग अपनी चारपाई के चारपाइयों के नीचे दफन कर दिए हैं। मेरे लिए तुम चारों ही आँखों के तारे हो। अपनी मलकियत का कोई भी हिस्सा मैंने छोटा बड़ा नहीं किया है। सफ़ा नंबर 69। इसलिए तुम में से हर एक मेरे रूबरू अपना अपना पाया मुकर्रर कर लो और मेरे मरने के बाद इनके नीचे जो भी गड़ा हुआ हो सो खोद कर निकाल लेना। किताब का पार्ट नंबर 4 यहाँ मुकम्मल होता है। किताब का बकिया हिस्सा किताब के पार्ट नंबर 5 में सुने।